वहीं आहान, ध्रुव, आकाश, सुमित और देव, जो उस वक्त वहां नाश्ते पर मौजूद थे, उनकी निगाहें बार बार खाने की ओर ललचा रही थीं। जैसे ही उन्होंने पुलाव का एक चम्मच भरकर अपने मुंह में डाला, उसका स्वाद लाजवाब था। धीरे धीरे उन्होंने परांठा भी खाया और उसके बाद खीर खाई। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी अलग ही दुनिया में पहुंच गए हों। इतना स्वादिष्ट खाना उन्होंने पहले कभी नहीं खाया था। हालांकि आस्था ने पहले भी आलू के परांठे, कचौरी और आलू की सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनाई थी, लेकिन आज का खाना कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट था। पांचों के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई थी। ध्रुव खुद को रोक नहीं पाया और बोला, अरे वाह भाभी, आप जानती हैं। ध्रुव बोला, भाभी आप जानती हैं, वर्ल्ड के बेस्ट शेफ इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने कॉन्टिनेंटल डिशेज बनाई हैं, वो भी इतनी स्वादिष्ट नहीं है जितना आपका बनाया हुआ हाथ का खाना। वाकई आप तो ग्रेट हो। इतना कहकर ध्रुव ने अचानक आस्था के हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया। ठीक उसी वक्त अरमान सिंघानिया वहां आ गया और उसने ध्रुव को आस्था का हाथ पकड़े हुए देख लिया। वो अपनी आंखों से आग के अंगारे बरसाने लगा। वो थोड़ी तेज आवाज में बोला, यहाँ क्या हो रहा है? अरमान के कहने पर ध्रुव ने फटाफट आस्था का हाथ छोड़ दिया और गहरी सांस लेकर अरमान की ओर देखने लगा। अरमान जल्दी से सबकी ओर देखता हुआ डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया। उसके बैठते ही देव खड़ा हो गया। दादाजी ने देव की ओर देखकर कहा, तुझे क्या हो गया है जो तू इस तरह से खड़ा हो गया? चल बैठकर नाश्ता पूरा कर, इस तरह से क्यों उठ रहा है? देव ने कुछ नहीं कहा, वो केवल सर झुकाकर खड़ा रहा। दादाजी देव की ओर घूरते हुए बोले, तू इसके लिए ऑफिस में काम करता है, घर पर नहीं, समझा? चल बैठकर नाश्ता कर। उन्होंने देव को नाश्ता करने के लिए बिठा दिया। ध्रुव अपने हाथों को आपस में मरोड़ने लगा। यहाँ क्या हो रहा है, ये बात सुनकर उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी फैल गई थी, लेकिन वो जल्दी से बात बदलते हुए बोला, अरमान भाई अच्छा हुआ आप आ गए, देखिए ना यहाँ भाभी ने कितना स्वादिष्ट नाश्ता बनाया है। प्लीज आज तो आपको भाभी के हाथ का खाना खाना ही होगा। ध्रुव की बात खत्म होते ही अरमान उसे घूरता रहा और थोड़ी तेज आवाज में बोला, राजेश मेरा नाश्ता लेकर आओ। नाश्ते में अरमान केवल थोड़े से फल या ब्लैक कॉफी ही लेता था, इससे ज्यादा वो कभी कुछ नहीं खाता था। लेकिन जैसे ही राजेश उसके लिए ब्लैक कॉफी और नाश्ता लेकर आया, दादाजी ने तुरंत उसके हाथ से नाश्ता ले लिया। दादाजी ने अरमान से अनुरोध किया, आज तू ये नहीं खाएगा, आज जो कुछ खाने के लिए मैं तुझे दूंगा तू वही खाएगा, और ये तेरे दादा की ख्वाहिश है। दादाजी अरमान को उम्मीद भरी नजरों से देखने लगे। अरमान सोचने लगा कि उसके दादाजी को हो क्या गया है, वे अपनी हर छोटी छोटी बातें मनवाने के लिए एकदम से बच्चे क्यों बन जाते हैं। अरमान बोला, दादाजी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप अच्छी तरह से जानते हैं मुझे इस तरह का हैवी खाना खाना पसंद नहीं है, और आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? और मैं ये हैवी खाना नहीं खाऊंगा, मैंने शुरू से यही सब नाश्ता खाया है। अरमान गुस्से से आस्था को भी घूर रहा था, क्योंकि सिर्फ उसी की वजह से ही उसके दादाजी उसे इस तरह से बातें कर रहे थे। आज तक किसी ने उसके खाने पीने रहने पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं लगाई थी, लेकिन जब से आस्था आई है तब से कुछ ना कुछ नया उसके साथ ही रहा है। दादाजी ने अरमान के सामने से थाली हटा ली। अरमान गुस्से से मुंह फुलाकर बैठ गया। दादाजी ने आस्था को इशारा किया, मानो कह रहे हों कि जाकर अरमान को नाश्ता परोस। अरमान कहने लगा, मैं इस लड़की के हाथ का बनाया हुआ खाना बिल्कुल नहीं खाने वाला हूँ, समझे आप सब लोग? दादाजी ने थोड़ा झूठ बोलते हुए कहा, पागल हो गया है क्या? बच्ची की तबीयत तो वैसे ही सही नहीं है, और ये नाश्ता इसने नहीं बनाया है, हमने एक नया शेफ रखा है, उसने ही बनाया है, समझा? दादाजी ने जानबूझकर अरमान से झूठ बोला था ताकि अरमान आस्था का बनाया हुआ खाना टेस्ट करे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि अगर अरमान आस्था के बनाए हुए हाथ का खाना खा लेता है तो उसे आस्था का बनाया हुआ खाना बहुत ज्यादा पसंद आएगा, उसके बाद वो किसी और के हाथों से खाने के बारे में सोच भी नहीं पाएगा। दादाजी ये भी जानते थे कि किसी भी मर्द के दिल के रास्ते उसके पेट से होकर गुजरते हैं। अगर आज अरमान को आस्था का बनाया हुआ खाना पसंद आ गया तो उन दोनों के साथ में रहने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे, इसीलिए दादाजी ने थोड़ा झूठ बोल दिया था। दादाजी के कहने पर आस्था ने अरमान की प्लेट में थोड़ी सी खीर, एक पनीर का पराठा, थोड़ा वेजिटेबल सूप और थोड़ा वेज पुलाव एक थाली में सजाकर उसके सामने रख दिया, साथ ही जूस का ग्लास भी भर दिया। अरमान ने आस्था को जहर उगलती हुई आंखों से देखा, मानो कह रहा हो कि मुझसे दूर रहना। जैसे ही उसने चम्मच भरकर वेज पुलाव टेस्ट किया, उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। उसका स्वाद उसके मुंह में पूरी तरह घुल चुका था। अरमान ने फिर मुंह पर नहीं उठाया, उसने एक एक करके वेज पुलाव, पराठा, खीर और वेजिटेबल सूप पिया। हालांकि सूप उसे बहुत बुरा लगता था, लेकिन आस्था का बनाया हुआ सूप ऐसा लग रहा था मानो किसी मास्टर शेफ को फेल कर दे। इतना अच्छा और स्वादिष्ट सूप उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं पिया था। उसने फटाफट फ्रूट कस्टर्ड और जूस भी खत्म कर लिया। अरमान को खाता हुआ देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो जन्मों जन्म का भूखा हो। अरमान ने जल्दी से खाना खत्म किया। देव समेत सभी हैरानी से अरमान की ओर देख रहे थे। वे अपना खाना भूल चुके थे। आकाश और सुमित भावुक चेहरे से उसे देख रहे थे। आकाश को लग रहा था कि अब बहुत जल्द डेविल किंग का एक नया रूप उन्हें देखने को मिलेगा। सारा खाना खाने के बाद अरमान को जोर से डकार आ गई। अरमान के डकार लेने पर चारों मुस्कुराने लगे। आस्था की आंखें हैरानी से फैल गईं। वो सोच रही थी कि क्या ये इंसान वाकई इतना भूखा था। अरमान ने पहली बार इतना स्वादिष्ट और घर का बना हाथ का खाना खाया था। उसके डकार आने पर बाकी सब हंसने लगे। अरमान के लिए वहां रुके रहना मुश्किल हो गया और वो वहां से जाने लगा, लेकिन दादाजी ने उसे रोकते हुए कहा, कहां जा रहा हो, तूने खाना खत्म कर लिया क्या? तो उस शेफ को इनाम नहीं देगा जिसने तेरे लिए इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है? अरमान दादाजी की ओर देखकर बोला, आपने जिस नए मास्टर शेफ को रखा है आप उसकी तनख्वाह दुगनी कर दो और उसे कह दो कि आज के बाद वो मेरे लिए सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और रात का डिनर वहीं बनाएगा। उसी वक्त दादाजी आस्था के पास गए और अरमान की ओर देखकर बोले, ये खाना तेरी बीवी ने बनाया है और मैं चाहता हूँ कि तूने आज पहली बार उसके हाथ का खाना खाया है तो तू उसे कुछ शगुन दे। सारा सच जानकर अरमान हैरानी से आस्था की ओर देखने लगा। उसे लग रहा था कि नए मास्टर शेफ ने खाना बनाया है। दादाजी अरमान को खाना खिलाने के लिए नए मास्टर शेफ बदलते रहते थे, इसलिए उसने सोचा कि कोई नया मास्टर शेफ आया होगा और उसी ने खाना बनाया है। लेकिन दादाजी के कहने पर कि ये खाना आस्था ने बनाया है, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वो खाना आस्था ने बनाया था। वो सोच भी नहीं सकता था कि वो उस लड़की के बनाए हुए हाथ का खाना इतना मजे लेकर खाएगा। अरमान के लिए वहां रुके रहना मुश्किल हो गया था। वो जल्द से जल्द वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन दादाजी ने उसे जाने से मना कर दिया। जब तक वो आस्था को उसका शगुन नहीं देता तब तक वो घर से बाहर नहीं जा सकता था। अब अरमान के पास कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन वो उसे कुछ देना भी नहीं चाहता था। दादाजी अरमान के नजदीक आए और अरमान के हाथ का ब्लू रंग का डायमंड ब्रेसलेट निकालकर आस्था को दे दिया। आस्था हैरानी से ब्रेसलेट देख रही थी। अरमान के दिल के इतने करीब ब्रेसलेट को आस्था को देते हुए देखकर वो गुस्से से आग बबूला हो उठा। वो अपनी खतरनाक आवाज में बोला, ये आप क्या कर रहे हैं दादाजी? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये ब्रेसलेट मेरे दिल के कितने करीब है और आप इस दो कौड़ी की मामूली सी लड़की को ये ब्रेसलेट देना चाहते हैं।
आस्था के लिए अरमान का ऐसा बर्ताव देखकर दादाजी उस पर गुस्सा होते हुए बोले, अपनी बकवास बंद कर अरमान, तेरी हिम्मत कैसी हुई हमारी बहू को दो कौड़ी का कहने की? याद रखना, मेरी बहू जिसे मैं अपनी बेटी मानता हूँ, तू उसकी इज्जत नहीं करेगा तो मजबूरन मुझे ये घर छोड़कर जाना होगा। दादाजी के कहने पर अरमान की आंखें हैरानी से फैल गईं। वो दादाजी से दूर होने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता था, लेकिन आज इस लड़की के लिए दादाजी ने उससे दूर होने की बात कही तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। गुस्से से आस्था पर आंखों ही आंखों में नफरत का वार करते हुए वो देव से बोला, यहाँ बैठकर नाश्ता कर लिया है तो चलो फटाफट से काम खत्म करना है। वो वहां से निकल गया और दादाजी ने वो ब्रेसलेट आस्था को जबरदस्ती दे दिया। आस्था ने मना करने की कितनी कोशिश की, लेकिन दादाजी ने कहा कि अगर उसने वो ब्रेसलेट नहीं लिया तो आज के बाद वो घर में ना नाश्ता बनाएगी ना खाना। आस्था को मजबूरन वो ब्रेसलेट लेना पड़ा। चारों हैरानी से ये सारा तमाशा देख रहे थे। आकाश बोला, मुझे लगता है कि हम लोगों को भी जाकर अपना अपना काम संभालना चाहिए। सब एक एक करके आस्था से मिलने के बाद वहां से जाने लगे, लेकिन दादाजी ने आकाश को रोकते हुए कहा, वो आकाश बेटा सुनो। आकाश तुरंत रुका और बोला, जी दादाजी आपने बुलाया। बेटा, वो आज जब बहू खाना परोस रही थी तो मैंने उसके हाथ पर कुछ अजीब सा निशान देखा है। तू जानता है कि अरमान का शादी को लेकर क्या सोच है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू बहू को लेकर हॉस्पिटल चला जा और उसे डॉक्टर रश्मि को दिखाकर लेकर आ। जब आस्था दादाजी को खाना परोस रही थी तब उसका दुपट्टा कंधे से सरक गया था, जिससे उसके हाथ पर लगे गहरे नीले निशान, जो अरमान के जोर से पकड़ने से हुए थे, दादाजी ने देख लिए थे। वो समझ चुके थे कि अरमान ने आस्था को हर्ट करने की कोशिश की है, इसीलिए वो आकाश के साथ आस्था को हॉस्पिटल भेजना चाहते थे। दादाजी की बात सुनने के बाद आकाश ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी।